हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 22, 23 एंड 24। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्व। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममारं प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने। ब्रजे वसंतम् नवनीत चोरम गोपांगनानां शदुकूल चोरम श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोरा गगण्यम पुरुषम नमामि श्री कृष्ण श्यामम मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 19 जिसका शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। यहाँ तक हमने पढ़ा कि महाराज परीक्षित आमरण अनशन उपवास रख के यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पर आकर विराजमान हो गए हैं और सारे ऋषिगण उनके इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं और देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, धुंधुबियां बज रही हैं और ऋषिगण महाराज परीक्षित को कहते हैं कि ये आप क्योंकि श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडवों के वंशजों में से हैं, तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि आप अपना सिंहासन अपने राज्य मुकुट सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अवश्य आप भगवान को प्राप्त करेंगे, आप अवश्य भगवान के लोक में जाएंगे और जब तक आप अपना कलेवर त्याग के भगवान के लोक में नहीं चले जाते तब तक हम यहाँ पर आपके साथ प्रतीक्षा करेंगे उस समय की। हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि अवश्य आप भगवान के धाम को लौटेंगे। उतना कहने के बाद महाराज परीक्षित बहुत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने देखा यहाँ पर वेद व्यास जी या सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 22 कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। आश्रुत्य तद्ऋषिगण वचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम् आभाषतैनान् अभिनन्द्य युक्ता शुश्रूषमाणश चरितानिवेशु। आश्रुत्य तद्ऋषिगण वचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम् आभाषतैनान् अभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश चरितानिवेशु। यहाँ पर सूत गोस्वामी उन ऋषियों ने जो शब्द उच्चारण किए थे उनके चार गुण बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर वे कह रहे हैं आश्रुत्य, जब उन्होंने महाराज परीक्षित तद्ऋषिगण ऋषिगणों ने जो शब्द कहे थे वचः उन वचनों को परीक्षित महाराज ने जब सुना आश्रुत्य यानी उन ऋषियों के इन शब्दों को जब परीक्षित महाराज ने सुना और वो कैसे शब्द थे उनकी वाणी के चार गुण बताते हैं। समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम। समम यानी कि उनके शब्दों में कोई सम थे, सम भाव से उन्होंने कहे थे, जैसा वो बोल रहे थे अंदर से उनकी भावना भी ऐसी थी, इक्वल सम का मतलब ऐसा नहीं कि चापलूसी करते हुए या फ्लैटरी शब्द बोलते हैं जो किसी को लोग जो है ना दूसरों को खुश करने के लिए अंदर में कुछ और भाव होता है और दूसरों को खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं बस ऐसे ही, लेकिन उनके शब्द ऋषियों के शब्द बहुत ही हृदय से निकले हुए थे, बाहर से अंदर से वो ऐसा ही चाहते थे कि परीक्षित महाराज का कल्याण हो और वो भगवत धाम को पधारे। समस्त ऋषियों के हृदय में राजा के लिए ऐसा ही भाव था कि वो भगवत प्राप्ति करें, उनका कल्याण हो। और आगे मधुच्युत, मधुच्युत का मतलब है कि सुनने में बहुत मधुर, इससे अधिक मधुर और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट शब्द और क्या हो सकते हैं जी के। ये यहाँ पर ऋषिगण महाराज परीक्षित को कहते हैं कलीवरम यावदसौ विहाय लोकम परम वीरजस्कम विशोकम। हम जानते हैं कि आप अपने इस कलेवर को त्यागने के बाद उस परम शांति वाले लोक को, उस परम लोक को प्राप्त करोगे जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। संत वीरजस्कम यानी संसारी दुखों से मुक्त है, विशोकम वहाँ पर कोई दुख नहीं है, ऐसे ही लोग को आप प्राप्त करोगे। तो इससे अधिक मधुर वचन और कोई नहीं हो सकते। आगे है गुरु, गुरु का मतलब होता है गंभीर। गंभीर का मतलब कि ये जो शब्द उन्होंने कहे थे वो वास्तव में उन्होंने अपने पद के अनुसार, वो कोई ऐसे नहीं कि मजाक में उनको बता रहे थे, वो वास्तव में ऐसा चाहते थे और ऐसा उनको पता था। वो त्रिकालदर्शी थे, वो परीक्षित महाराज के लाभ के लिए ऐसा शब्द बोल रहे थे और वो चाहते थे कि ऐसा होने वाला है कि आप यहाँ पर बैठ के भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे, भगवत प्राप्ति करोगे और उसी से सब हम सबका कल्याण होने वाला है, यानी यहाँ पर आप जो आए हो उसके कारण हमको भी भगवान की कथाएं श्रवण करने का अवसर मिलेगा। अव्यलीकम यानी सर्वथा सत्य, वो जो बोल रहे हैं उसके अंदर कोई निष्कपट भाव से बोल रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो कपट के साथ बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजकल तो ब्राह्मण लोग भी ऐसे करते हैं, नाम नहाद जो ब्राह्मण होते हैं, बस जिससे दूसरे को खुशी मिलती है वो शब्द बोल देते हैं ताकि बस खाली कपट उनके मन में होता है। लेकिन ये जो बोल रहे थे अव्यलीकम सर्वथा सत्य बोल रहे थे। आगे कहते हैं आभाष्य तेनान अभिनंद्य युक्तान, आभाष्य उन्होंने कहा एतान, जब महाराजा परीक्षित ने उनके ये शब्द सुने अभिनंद्य उन्होंने उसका स्वागत किया और फिर अपनी इच्छा प्रकट की। कौन सी इच्छा? वास्तव में भक्तों एक भक्त के हृदय में कितनी भक्ति है, वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं। किसी भी भक्ति की यदि कसौटी परखनी हो ना तो ये देखना चाहिए कि वो सुनना क्या चाहता है। यहाँ पर परीक्षित महाराज अपनी जीवन के अंतिम स्टेप पे खड़े हैं और वहां पर वे क्या चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के आ गए, अपना राज्य, अपना धन, अपने पुत्र, अपनी पत्नियां, अपने संबंध, सबका परित्याग कर गए, परंतु एक इच्छा वो उसका परित्याग नहीं कर सके। शुश्रूषमाणा, शुश्रूषा यानी सुनने के लिए उनके हृदय में इच्छा थी, यानी महाराजा परीक्षित की ही की इच्छा बाकी रह गई थी, वो श्रवण करना चाहते थे। शुश्रूषमाणा चरितानि वेशो, वो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहते थे। बस एक ही इच्छा उनके मन, और वास्तव में एक भक्त की यही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। जब श्री रूपा जी अंतिम समय में, जब बहुत ही ज्यादा रुग्ण अवस्था में, बिल्कुल अंतिम समय में थे, तब वे कहते थे बस मुझे खाली
श्री भगवान की लीलाओं को, भागवतम को मेरे सामने पढ़ते रहो। भगवान के इन लीलाओं को श्रवण करना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त तो मेरी और कोई इच्छा नहीं है। यही यहाँ पर परीक्षित महाराज ने ऋषियों को कहा, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं रह गई। शुश्रूषमाश चरितानि विष्णु, यही एक भक्त की भक्ति की कसौटी है कि वो भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मेरे भक्तों को इसी से आनंद मिलता है। तुष्यंति च रमन्ति च, संसार के सारे कष्ट सारे दुख वो समय भूल जाता है जब वो मेरे विषय में सुनने की जिज्ञासा करता है। अनुवाद, ऋषियों ने जो कुछ कहा वह अति श्रुतिधर सार्थक तथा यथा संभव पूर्ण रूपेण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। आगे महाराज परीक्षित उन ऋषियों से कहते हैं कि आप तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति हो, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। ये तो आप यहाँ पर आए हो, मेरे ऊपर आपकी अनुकंपा है, ये तो अनुग्रह किया है आप लोगों ने। क्योंकि ये जो भगवत भक्त होते हैं, जो भगवान के कृपालु शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका ये स्वभाव है। साधारण व्यक्ति के मन में ऐसी बात आती नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों का कल्याण हो। साधारण हम जैसे जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि कैसे मेरा कल्याण हो, कैसे मेरा यश बढ़े, कैसे मुझे लाभ प्राप्त हो। हर किसी की यही इच्छा होती है ना। आज आप जीवन में देखो, सुबह से लेकर रात तक जीव कार्य करता है, चलता रहता है, विचरण करता रहता है, और उस सारे कार्य का, उस सारे स्ट्रगल का, सारे परिश्रम का एक ही कारण होता है, मुझे लाभ चाहिए, मैं लाभ कैसे प्राप्त करूं, बस यही। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो साधुगण होते हैं, संत होते हैं, वो सुबह से लेकर रात तक बस एक ही कार्य करते रहते हैं कि मैं कैसे दूसरों का कल्याण करूं, मैं कैसे दूसरों के लिए कार्य करूं, मैं दूसरों को कैसे उनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाऊं। इसलिए कहते हैं, समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरा स्त्री प्रेष्ठे नेहातनामूत्र च कश्चनार्थ रिते परानु ग्रहमात्मशीलम् समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्री प्रेष्ठे नेहातनामूत्र च कश्चनार्थ रिते परानु ग्रहमात्मशीलम्। महाराज परीक्षित उन सब जो वहाँ पर साधु और संत एकत्रित हुए हैं, जो ऋषिगण एकत्रित हुए, उन्हें कह रहे हैं समागता। समागता माना सब आप एकत्रित हुए हो, सर्वत एव सर्वे यानी हर जगह से आप यहाँ पर आ गए हो, सिर्फ मेरी कल्याण करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और आप ब्रह्मन, आप लोगों के अंदर इतना ज्ञान है, वेदा यथा मूर्ति धरा स्त्री पृष्ठे। स्त्री पृष्ठे का मतलब होता है जिनके जो ब्रह्मा जी हैं, उन जो वो लोक जो ब्रह्म लोक है वो तीनों लोकों के ऊपर, यानी कि ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में सबसे ऊपर है, मध्य के लोकों से ऊपर है, और ये जो ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोकों से ऊपर जो ब्रह्मलोक है, यानी इस ब्रह्मांड का जो सबसे ऊंचा लोक है, वो ब्रह्मलोक में जो वेद होते हैं ना, यहाँ भौतिक जगत में हम लोग वेद शास्त्रों को कैसे देखते हैं कि बुक की सूरत में होते हैं ना, जैसे बुक होता है पेपर्स पे लिखे होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में सारे वेद मूर्तिमान स्वरूप में होते हैं। वेदा यथा
मूर्ति धारा स्त्री पृष्ठ है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में सारे वेद मूर्तिमान स्वरूप में होते हैं, वैसे ही आप सब यहाँ पर आए हो, वो भी मूर्तिमान वेद ही हो, यानी आप सबके अंदर संपूर्ण वेदों का ज्ञान है। और यहाँ पर आने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेहाथ नामोत्र च कश्चनार्थ, कि मेरे ऊपर नेहाथ नामोत्र, यानी ना इस भौतिक जगत में और ना ही अन्य किसी जगत में कश्चन अन्य कोई अर्थ और कोई भी अर्थ नहीं है, और कोई भी आपका स्वार्थ नहीं है। सिर्फ एक ही स्वार्थ है, एक ही इच्छा है, एक ही आपके अंदर एक ही अभिलाषा है, रीते परानु ग्रहमात्मशीलम, बस आप यही चाहते हो कि अनुग्रह हो आत्मशीलम, यानी आप लोगों का स्वभाव यही है, आपका स्वभाव दूसरों पर अनुग्रह करने का है। नेहाथ नामोत्र च कश्चनार्थ, इसके अतिरिक्त आपका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ संसार में सारे लोग सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते हैं, सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि कैसे मुझे मेरा स्वार्थ प्राप्त हो, कैसे मुझे मेरा कल्याण होना चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए, मुझे यश मिलना चाहिए, मुझे ऐश्वर्य मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे प्रेम मिलना चाहिए, बस हर एक जीव की यही इच्छा होती है। मनुष्य मात्र केवल अपने स्वार्थ ढूंढता है। आज हम जिसको प्रेम कहते हैं ना, उस प्रेम में भी ये निस्वार्थ जो माता संतान का प्रेम होता था ना, आज उसमें भी प्रेम ढूंढा जाता है। बाकी तो प्रेम की कोई बात, इस भौतिक जगत में प्रेम नाम का कोई अर्थ नहीं रह गया सिवाय स्वार्थ के। निज इंद्रिय तृप्ति वांछा, बस किस तरह से मुझे आनंद मिलना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, मुझे लाभ प्राप्त होना चाहिए, इसी के लिए जीव यहाँ पर आज सारा जीवन परिश्रम करता। ये जो भी कोई कार्य कर रहा है, आज बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, वकील एडवोकेट्स वकालत कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर भी यहाँ पर जगह जगह पर हॉस्पिटल क्लिनिक्स खोल के बैठे हैं। उनका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं लोगों को ठीक करूं, उनका अभिप्राय ये है कि मेरा बिजनेस चलना चाहिए, ये इच्छा होती है, हमारा बिजनेस चलना चाहिए। मन में इच्छा होती है कि ज्यादा सीजन होना चाहिए हमारा, ज्यादा लोग बीमार हों, ज्यादा लोग आए हमारे पास, बस इच्छा यही है कि किसी तरह से मुझे लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनके अंदर ये इच्छा होती है। सिर्फ संत ही ऐसी इच्छा करते हैं कि मैं कैसे दूसरों का कल्याण करूं, भले स्वयं कष्ट सहकर भी मैं दूसरों का कल्याण करना चाहता हूं, भले मुझे चार लोग अगर बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं कैसे उनको कृष्ण तक पहुंचाऊं, कैसे उनके रियल स्थिति, उनके रियल प्रीतम, उनकी रियल आत्म संतुष्टि के विषय में मैं उनको कैसे ज्ञान दूं, कैसे वो सदैव यही प्रयास कर रहे होते हैं कि मैं कैसे भागवत प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैसे सब जीवों के हृदय में भागवत प्रेम को पहुंचाऊं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा क्या करता है बताओ। आज हम देखें, ये कोई इतिहास की घटना नहीं है, ये कल की बात है कि इसी युग आज की बात है समझो। यहाँ पर 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो वृंदावन में बैठा होगा, कोई भी भक्त होगा, वो यही सोचेगा अच्छा है अंतिम घड़ियां हैं, वृंदावन जैसे पवित्र स्थान पर मेरा शरीर छूटेगा, मैं कहीं यहाँ से जाऊं नहीं। दामोदर राधा दामोदर में वहां उनको स्थान मिला था, वो वहां पर बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हृदय के अंदर एक ही अनुकंपा, एक ही हृदय के अंदर अनुग्रह कि उन पाश्चात्य देश के जीवों का कल्याण मुझे करना है, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन मुझे करना है, अपना सारा सुख शांति का जीवन छोड़ के उस जगह पर जहाँ पर केवल कंडम जीव रहते थे, सिर्फ उनकी इच्छा, इतनी अपवित्र जीव, कोई पता नहीं था कि कौन मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, क्या वहाँ पर किसी को पहचानते भी नहीं थे। हम जाएंगे वहाँ ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई मेरा पहचान वाला ना हो, जहाँ पर कोई मेरा सम्मान करने वाला, और उनके पास कोई धन भी नहीं था, कोई भौतिक वस्तु नहीं थी जिसका सपोर्ट लेकर वो वहाँ पर जाएं। लेकिन हृदय के अंदर बस एक ही इच्छा कि पाश्चात्य देश तारने, मुझे उन पाश्चात्य देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज को तारने के लिए वहाँ पर जाना है, वहाँ के व्यक्तियों को तारना है मुझे, जो निज इंद्रिय तृप्ति के अंदर लिप्त हैं, उनको वहाँ से निकाल कर कृष्ण के चरणों तक पहुँचाना है। ये केवल शुद्ध भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप मूर्तिमान वेद हैं और यहाँ पर आपके आने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर अनुग्रह करना है, इसके अतिरिक्त आपके अंदर और कोई इच्छा नहीं है। अनुवाद। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा करके एकत्रित हुए हैं। आप सभी साक्षात परम ज्ञान स्वरूप हैं, जो तीनों जगत के ऊपर के लोक यानी सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपका और कोई स्वार्थ नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश स्वरूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक स्वरूप से अधिक 78% पाए जाते हैं, यानी 78% ये सारे गुण पाए जाते हैं जो भगवान के शुद्ध, जिस तरह से हम क्या सोचते हैं, भगवान से दूर रहकर या भगवान की भक्ति से दूर होकर हम सौंदर्य प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम संपत्ति अर्जित करेंगे, मगर ये ऐसे नहीं होगा। जैसे जैसे हम भगवान के करीब जाते जाएंगे, जैसे जैसे भगवान के गुणों का चिंतन करते जाएंगे, भगवान से प्रेम का संबंध निर्माण करते जाएंगे, ये सारे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। ये शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अधिक से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भौतिक शक्ति यानी माया के द्वारा उसी प्रकार प्रच्छन्न रहते हैं जिस प्रकार मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज से पर्याप्त मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुण से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में तीन लोक हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्यलोक के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्णतया निश्रांत होते हैं और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं, फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होते हैं। अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं दिखाते, वे एक तरह से इच्छा विहीन भक्त हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वेदा यथा मूर्ति धरास पृष्ठ है, कि जैसे ब्रह्मा जी के लोक में या सत्य लोक में ऊपर लोक के जो वासी होते हैं वो इतने ज्ञानमय होते हैं कि उनको कोई भी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं होती है, उसी प्रकार ये सारे ऋषिगण भी उन्हीं की तरह ज्ञानमय है, उनके हृदय में भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण तरह अवगत होते हैं, होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई भी रुचि नहीं दिखाते, वे एक तरह से इच्छाविहीन भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता है और दिव्य जगत में वे स्वयं पूर्ण रहते हैं, तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें संसार में माया द्वारा प्रवंचित सर रही पतित आत्माओं के उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, हम सब यहाँ पर आए हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन जो गुरुजन होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। भगवान उनको केवल हमारे कल्याण के लिए भेजते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है हृदय के अंदर। वैष्णव वही होता है जिनके हृदय के अंदर यह उत्कंठा हो कि मैं किस प्रकार से जीवों का कल्याण करूं, तो उनके हृदय के अंदर ही कल्याण की भावना होती है। तो महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, आपको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, न इस भौतिक जगत में आपका कोई अर्थ है। आप तो यहाँ पर आए ही इसलिए हो कि मुझ जैसी पतित आत्माओं का कल्याण कर सको। क्योंकि महाराज परीक्षित को उन ब्राह्मणों के ऊपर पूरा विश्वास था और उनको पता था कि वो यहाँ पर कोई मेरे राज्य के वैभव को देखकर या मेरे इस कीर्ति को देखकर, मेरे यश को देखकर नहीं, केवल मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। तो अब वो अपने मनोरथ के विषय में वास्तविक प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रथम प्रश्न है महाराजा परीक्षित का, और इसी के द्वारा संपूर्ण जीवों का कल्याण होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दो प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कहते हैं, ततश्च वह पृच्छ्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायः सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यम् शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ता ततश्च वह पृच्छ्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्र इति कृत्ययातायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ता ततश्च वह। ततश्च इस तरह वह तुमको पृच्छ्यमिमं विपृच्छे, पृच्छ्यमिमं यानी अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमं ये पूछ रहा हूँ, विपृच्छे जो कि वास्तव में पूछने योग्य है। अभी मैं क्योंकि आपसे बिल्कुल विश्वस्त हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं, उसी के लिए आपने यहाँ पर आना स्वीकार किया है। अपने सारे कर्तव्यों को साइड में रख के आप यहाँ पर मुझे कृतज्ञ करने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। अब मैं आपसे वास्तविक बात जो मुझे पूछनी है, ततश्च वह पृच्छ्यमिमं विपृच्छे, वो पूछने योग्य लाइक, पूछने लाइक बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या है? विश्रभ्य विप्र इति कृत्यता। विश्रभ्य यानी विश्वास है हम मुझे कि आप सब विप्र मुझे अच्छे से बताओगे। इति कृत्यतायां कि जीवों के यहाँ भौतिक जगत में बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, है ना। जब एक जीव इस संसार में आता है तो कृत्यतायां विभिन्न कर्तव्यों में से सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यम्, ये दो प्रश्न है। एक तो सर्वात्मना यानी संपूर्ण जीवों का, जितने भी जीव हैं, सर्व आत्मना प्रत्येक के द्वारा, यानी हर एक अवस्था में, सभी काल में, सभी स्थिति में एक जीव का, और स्पेशली म्रियमाणस्य, और जो लोग मृत्यु के, म्रियमाणस्य मना विशेष रूप से जो मरणासन व्यक्ति हैं, जो मरने वाले हैं, उनके चकृत्यम, वास्तव में उनके लिए क्या कर्तव्य है। वैसे तो प्रत्येक स्थिति में एक जीव का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, पहला प्रश्न ये है कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, और दूसरा स्पेशली म्रियमाणस्य कृत्यम, जो लोग मृत्यु के निकट हैं, उनका क्या कर्तव्य है। आप मुझे कोई जल्दी नहीं है, वे कहते हैं शुद्धम च तत्र मृषताभियुक्तम शुद्धम। बिल्कुल सही बात बताइए, छान के फिल्टर करके एक चीज बताइए। शुद्धम च तत्र वहां पर आमृषत यानी पूर्ण विचार विमर्श कीजिए, अभियुक्ता सर्वथा प्रयुक्त करके उपयुक्त करके एक निर्णय दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि इस भौतिक जगत में मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? किसी भी अवस्था में, सभी अवस्था में, हर सिचुएशन में एक जीव को क्या करना है, और उससे भी बढ़कर कि जो मरने वाला है, मरणासन है, सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम्। मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है ये मुझे बताइए। आपस में विचार विमर्श करके मुझे एक शुद्धम शुद्धम एकदम सही वाली बात बताइए। अनुवाद, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने सद्य कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात कृपया मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला है मरणासन उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न ये है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का क्या कर्तव्य है। वे कहते हैं सर्वात्मना सर्वात्मना कृत्यम, हर एक जीव को सभी परिस्थितियों में क्या करना है। तथा दूसरा प्रश्न क्या है, म्रियमाणैश्च कृत्यम, दूसरा प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मरणशील है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर एक को इसका उत्तर जानना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मृत्यु हमारे द्वार पर आनी है, और उस मृत्यु को हम कब फेस कर सकेंगे, जब हमने वह कार्य किया होगा जो मरणासन व्यक्ति को करना है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति मरणशील है, चाहे तुरंत मरे या 100 वर्षों के बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों के संबंध में है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से ही इस तथ्य से अवगत है, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वरूप में दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की हैं और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि चाहती है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि एक जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि इस प्रश्न से भागवत प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद से जब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे, वहां से यह हमारा भागवतम शुरू होता है, और यह पूरा भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद से तक बस ये दो प्रश्नों का उत्तर ही है कि जीव को क्या करना है, एक जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है, और मरणशील व्यक्ति को क्या करना है। और उसको अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंतिम भाग में, अर्थात सर्व धर्मान परित्यज माम एकम श्रम रजा, बहुत सारे कर्तव्य हैं जीवों के, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। महाराज परीक्षित इस बात को जानते थे, फिर भी वे कहते हैं शुद्धम तत्रा मृषता वियुक्ता। आप सब यहाँ पर एकत्रित हो, हर एक ऋषि की एक अलग राय हो सकती है, हर एक मुनि की एक अलग राय हो सकती है, लेकिन आप सब एक मत होकर मुझे बताइए कि क्या कर्तव्य है जीव का, ताकि आगे आने वाले जीवों को अपना कर्तव्य एकदम क्लियर दिखे, ताकि वो अलग अलग, क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि बहुत सारी आत्म साक्षात्कार की विभिन्न दर्शनों के अनेक विधियां बताई, उनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की हैं, कुछ तृतीय कोटि की हैं, लेकिन एक विधि बताइए कि किस तरह से हम अपने जीवन को वास्तविक लाभदायक बना सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, किस तरह से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक विधि बताइए। शुद्धम तत्रा मिश्रता वियुक्ता। आप सब आपस में विचार विमर्श कीजिए और एक एक सरल उपाय बताइए, एक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मरने वाले व्यक्ति का कल्याण हो सके। और हम सब क्योंकि मरने वाले हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।